बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि सब्र कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, और कहा भी तो गया है कि कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। इसी सुविचार के साथ एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ आइए शुरू करें समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं के स्वागत के लिए तैयार हैं उन्हीं के अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम। In the next half an hour, we will bring you the latest national and international news, also Metro City updates, and we'll explore the history of today, that is 30th of December. And we'll begin with the headlines first, shall we?
बिल्कुल शगुन, शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
Indian Space Research Organization ISRO will launch two satellites tonight from Sriharikota to demonstrate docking and undocking of spacecraft in orbit, which will make India the fourth country in the world to achieve the feat. ISRO's war horse rocket Polar Satellite Launch Vehicle PSLV will place the two satellites SDX-01 and SDX-02 in a 476-kilometer circular orbit and attempt the space docking experiment SPADEX in the first week of January. The SPADEX mission is expected to be a stepping stone for India's future endeavors in space exploration, which will include getting rocks and soil from the moon on Earth, the proposed Bharatiya Antariksh Station, and landing an astronaut on the lunar surface. Only the US, Russia, and China have mastered space docking technologies.
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन आज व्यापार एवं उद्योग जगत के दिग्गजों संग बजट पूर्व परामर्श करेंगी। श्रीमती सीतारमन संसद में लगातार आठवां बजट पेश करने जा रही हैं। इससे एक महीने पहले होने वाली ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के संकेतों से जूझ रही है। पिछले तीन वर्षों में मजबूत वृद्धि के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है, जिसमें राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों पर दबाव बना हुआ है। इस बैठक में कॉरपोरेट जगत से अब उच्च विकास को समर्थन देने के लिए खपत को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर देने की उम्मीद है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a three-day official visit to Qatar from today. During the visit, he will meet the Prime Minister and Foreign Minister of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani. In a statement, External Affairs Ministry said the visit will enable both sides to review various aspects of bilateral relations, including political, trade, investment, energy, security, cultural and people-to-people, as well as the regional and international issues of mutual interest.
आकाशवाणी से कल रविवार प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है, और ये बहुत गर्व की बात है कि अगले वर्ष 26 जनवरी को संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो साल भर चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले प्रयागराज गए थे और हेलीकॉप्टर से समूचे कुंभ क्षेत्र को देखा। श्री मोदी ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता में भी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में लाखों संत, हजारों परंपराएं और कई अखाड़ों सहित करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, और विविधता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार प्रयागराज में देश और विश्व भर के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से लोग विभिन्न घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच पाएंगे। इसी नेविगेशन व्यवस्था से पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैट बोर्ड का भी प्रयोग होगा। इसके माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी प्रत्येक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुंभ मेले का पूरा क्षेत्र AI संचालित कैमरे से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने और हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि क्रिश त्रिश और बालची बॉय KGB सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है। श्री मोदी ने कहा कि ये तीन एनिमेशन चरित्र हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सीरीज केवल भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन के 10:30 बजे किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर बैठक यानी वेव्स समिट का आयोजन अगले वर्ष भारत में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेव्स शिखर बैठक के दौरान मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज तथा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े लोग भारत आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वहीं क्रिएटर अर्थव्यवस्था नई ऊर्जा ला रही है। उन्होंने भारत के मनोरंजन और क्रिएटिव उद्योग से वेव्स शिखर बैठक का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों के इस मौसम में देश भर में खेलों और फिटनेस से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय संस्कृति का प्रकाश दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। उन्होंने मिस्र के विद्यार्थियों का जिक्र किया जिन्होंने भारतीय देवी देवताओं, नृत्य कलाओं और महान विभूतियों के चित्र बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि 2025 में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा।
In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 p.m. tonight, we will bring an insightful discussion on effective disaster preparedness. We would be joined in our studios by Lieutenant General Syed Atta Hasnain, retired, member, National Disaster Management Authority. During the program, listeners will have the opportunity to ask questions to our expert about preparedness with respect to disasters, do's and don'ts during a disaster, and any other related queries. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2342-1050 and 011-233-1444, 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
Gruh Mantri Amit Shah aaj ek din ke Gujarat daure par rahenge. Ve Asura mein Shri Dharmapur Teerth sthit Shrimad Raj Chandra Ashram ke varshik samaroh mein shamil honge aur Raj Sabha Gruh mein Mahamastakabhishek aayojan mein bhag lenge.
Former U.S. President Jimmy Carter passed away last night at his home in Plains, Georgia, at the age of 100. He was the oldest living president of all time and the third U.S. president to visit India. Mr. Carter had been suffering from an aggressive form of melanoma, a skin cancer with tumors that had spread to his liver and brain. He had stopped medical treatment and was receiving hospice care at home. His death was announced by the Carter Center in Atlanta. A Democrat, former President Carter served one term from 1977 to 1981. After his presidency, he carved out an extraordinary post-presidency life and was awarded the Nobel Peace Prize in 2002.
Ukraine ke Rashtrapati Volodymyr Zelensky ne kal Canada ke Pradhanmantri Justin Trudeau se baatcheet ki. उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से यूक्रेनी हथियारों के उत्पादन के लिए धन बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर हथियार निर्माण के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा के ग्रुप ऑफ सेवन G7 की अध्यक्षता संभालने से पहले यह आह्वान किया। इससे पहले नवंबर में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस के भीतरी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन द्वारा लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता के कड़े आलोचक रहे हैं।
Former Georgian footballer Mikhail Kvaratskhelia was sworn in as the president of Georgia in the ceremony held at the parliament in Tbilisi, following weeks of protest and the refusal of his pro-Western predecessor to step down. Kvaratskhelia, a 53-year-old former national football player who has also played in the English Premier League, took his oath on the Bible and the Georgian constitution, pledging to serve the nation's interests amid the ongoing political crisis. Meanwhile, outgoing President Salom Zurabishvili, in a defiant speech to her supporters outside the presidential palace, said she was leaving the residence but still considered herself the legitimate president. She further argued that Kvaratskhelia was not properly elected, as the lawmakers who chose him were part of an October parliamentary election that she claims was tainted by fraud. Earlier, the Georgian Dream Party had warned Zurabishvili with imprisonment if she refused to vacate the presidential residence in central Tbilisi.
आकाशवाणी समाचार विशेष वृषांत श्रृंखला में वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय ने भारत को मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और सफलताएं हासिल की हैं। कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर।
भारत और चीन के बीच सीमा विवादों पर जारी मतभेद को कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता के कारण सीमा पर शांति बहाली का रास्ता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वहीं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने कई निर्णय लिए, जिसके कारण रक्षा उत्पादन 1,26,000 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा 2023-24 में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2022-23 की तुलना में 32% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इस साल अक्टूबर में गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और विदेशी खर्च को कम करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,22,000 करोड़ रूपए के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
तो शगुन, ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार, और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
यस रवि, वील बिगिन विद चेन्नई। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट ऑल राइस फैमिली कार्ड होल्डर्स एंड फैमिलीज लिविंग इन श्रीलंकन तमिल रिहैबिलिटेशन कैंप्स विल बी प्रोवाइडेड विद 1 किलो ऑफ राइस, 1 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1 होल शुगर केन ईच टू सेलिब्रेट द तमिल फेस्टिवल ऑफ पोंगल in January 2025. Over 2.2 crore families will be benefited and the government will entail a cost of 250 crore rupees. The state government press release further added that the card holders will also receive free dhoti and sari during the festival. Now let's turn our attention to Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar released the autobiography of former Indian wicketkeeper Syed Kirmani in Bengaluru yesterday. Speaking thereafter, Shivkumar said that he's a fan of cricketers Chandrasekhar, G.R. Vishwanath and Kirmani. He informed that Kirmani played 88 matches and during his illustrious career, he created a legacy for himself and brought laurels for the country. More news from Bengaluru. Union Minister for Heavy Industries and Steel, H.D. Kumaraswamy, felt a need to preserve the unique Hawaiakea language and culture. He was speaking at the concluding session of the third edition of World Hawaiakea Sammelan in Bengaluru yesterday. It is a community settled in coastal Karnataka and Shivamoga, following their own language and culture. He proposed to set up a dedicated academy, university and research center for the preservation of Hawaiakea language. Now let's turn our attention to Telangana. Telangana witnessed a steep 22% increase in crime rate in 2024, with police department registering 169,477 cases. Telangana Director General of Police Dr. Jitendra, while releasing the annual report of 2024 in Hyderabad yesterday, said the cyber crime rate also increased by around 43.33% in the year in the state. Telangana witnessed an increase in conventional crimes such as robbery, burglary, murders, rape, cheating, among other offences, he said. He said Telangana has become the first state to register a digital FIR. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Ravi will update us with the happenings in Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी बिल्कुल शगुन, नजर डाल लेते हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर और शुरुआत करते हैं दिल्ली के समाचारों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल को अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। 20 और 33 साल के 2 बांग्लादेशी पुरुष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में रह रहे थे, वहीं 5 महिलाएं भी उसी क्षेत्र में रह रही थीं। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन प्रवासियों के अवैध निवास से संबंधित सूचना कल मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मीडिया से बातचीत में दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि कुछ बांग्लादेशी प्रवासी निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे थे, जबकि अन्य प्रवासी ब्यूटी पार्लर में काम करने की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में नए साल के जश्न के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया है कि इस महीने की 31 तारीख को रात 8 बजे से नए साल के जश्न के समापन तक कैनॉट प्लेस के आसपास यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रचा है। उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। पर्वतारोहण कौशल की असाधारण उपलब्धि का प्रदर्शन करते हुए काम्या ने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसीयुस्को, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकॉनकागुआ, उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली, एशिया के माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका पर विजय प्राप्त की है। युवा पर्वतारोही काम्या इस चुनौती पर विजय के लिए 24 दिसंबर को अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ माउंट विसेंट अंटार्कटिका के शिखर पर पहुंची। भारतीय नौसेना ने इस उपलब्धि के लिए काम्या कार्तिकेयन और उनके पिता को बधाई दी है। काम्या की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें न केवल वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उनकी प्रशंसा भी की थी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर कल पहला वाणिज्यिक विमान सफलतापूर्वक उतरा। इंडिगो A320 ने मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरकर सीधे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस सफल लैंडिंग के बाद विमान को एक हवाई सैल्यूट भी दिया गया। प्रमाणन परीक्षण में लैंडिंग के तकनीकी मूल्यांकन और टेक ऑफ कौशल को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडको के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नागर विमानन महानिदेशालय DGCA, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अधिकारी और अन्य मुख्य एजेंसियों ने भागीदारी की। चलते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता की ओर। पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किए गए मनोज गुप्ता को कल अलीपुर कोर्ट ने 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा से मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उसका वास्तविक निवास कोलकाता के बेहाला में है। गिरफ्तारी से पहले वे बोहाला के साखेर बाजार में ट्रैवल एजेंसी चलाता था। माना जा रहा है कि वो पासपोर्ट धोखाधड़ी का सरगना है और इसके साथ अवैध रूप से धन का लेनदेन करने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मनोज गुप्ता सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी FM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे और अब स्पोर्ट्स की कुछ बात।
रवि, नाउ लेट्स प्रोवाइड आवर लिसनर्स विद द हैपनिंग्स इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
जी,
हरियाणा स्टीलर्स वन द 11th सीजन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग आफ्टर डिफीटिंग पटना पायरेट्स 32-23 इन द फाइनल इन बालेवाड़ी पुणे लास्ट नाइट। वी हैव अ रिपोर्ट।
हरियाणा डिफीटेड पटना 34-31 टू विन देयर मेड इन PKL टाइटल। शिवम पटारे स्कोर 9 points, द मोस्ट इन द फाइनल। द चैंपियंस वर अवार्डेड 3 crore rupees, वाइल रनर्स अप पटना पायरेट्स टुक होम 1.8 crore rupees. Patna Pirates' Devang Dalal emerged as the top raider of PKL 2024, scoring 301 points in 25 matches. In chess, the highly anticipated FIDE World Blitz Chess Championship, along alongside the Women's World Bliss Chess Championship kicks off tonight in New York. World number one Grandmaster Magnus Carlsen will return after a brief exit following a dress code issue. FIDE President Arkady Dvorkovich later relaxed the rules, allowing Carlsen's return. For India, GM Arjun Arigaisi and GM R. Pragyananda will compete in the open section, while Hampi Konneru, fresh off her second World Rapid Chess Championship victory, will compete in the women's section. In women's football, the Indian women's team will face the Maldives in a FIFA international friendly in Bengaluru today at 3:30 PM IST. In the Santosh Trophy football, West Bengal defeated defending champion Services 4-2 in the semi-finals, while Kerala outplayed Manipur 5-1 to advance to the final. West Bengal will face Kerala in the final tomorrow at the GMC Balayogi Stadium in Hyderabad. In cricket, South Africa became the first team to secure a spot in the World Test Championship final at Lord's Cricket Ground in London next year, defeating Pakistan by 2 wickets. The second spot remains up for grabs with Australia, India and Sri Lanka as contenders. In handball, Kerala defeated Chandigarh 34-31 to clinch their maiden senior national men's handball championship title. Devendra was named best player of the championship, while Rahul was awarded best goalkeeper. And in the Hockey India League, Surma Hockey Club defeated Tamil Nadu Dragons 4-1 in a penalty shootout after a 1-1 draw at regular time. Earlier, Shrachi Rad Bengal Tigers defeated Hyderabad Tufans 3-2 to secure all 3 points. Today, UP Rudras will take on Vedanta Kalinga Lancers at 8:15 PM IST at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वैसे शगुन, आपको देखकर लग रहा है कि आपको आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है।
जी, आज बहुत ज्यादा ठंड है भी रवि।
बढ़ते हैं मुंबई की ओर। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
जी, Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Now talking about Bengaluru, it is expected to have mist. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad again is expected to have fog or mist, and this would occur in the early morning hours.
Jee.
The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
जी, और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की। तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1687 को एक चार्टर जारी किया गया जिसमें जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना, सुचारू न्यायिक पद्धति का विकास और करारोपण अधिकारों का उल्लेख किया गया। इस चार्टर के अंतर्गत तत्कालीन मद्रास का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। 1703 में आज के दिन जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप से 37,000 लोगों की मृत्यु हुई थी शगुन। 1803 में आज के दिन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर नियंत्रण किया था। 1893 में आज के दिन रूस और फ्रांस ने सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और 1922 में आज के दिन रूस की राजधानी मॉस्को के बोल्शोई थिएटर से सोवियत संघ के निर्माण की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। और 1935 में आज ही के दिन इटली के लड़ाकू विमानों के हमले में अफ्रीकी देश इथोपिया स्थित स्वीडन की रेडक्रॉस इकाई ध्वस्त हुई थी। और 1943 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया था।
एंड रवि, इन द ईयर 1953 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस बिल वाज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया।
जी, और 1975 में आज के दिन अफ्रीकी देश मेडागास्कर में संविधान प्रभावी हुआ।
इन द ईयर 1974 द फिफ्थ इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाज ओपन्ड। इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय सत्यजीत रे एट न्यू दिल्ली।
1979 में आज के दिन पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो ने संविधान अंगीकार किया। और 1996 में आज के दिन ग्वाटेमाला में गत 36 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हुआ था।
जी।
और शगुन, अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का।
Absolutely.
तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित विक्रम साराभाई का, जिनको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आपका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में, लेकिन आपने इस संसार से विदा ली 30 दिसंबर 1971 तिरुवनंतपुरम में। इनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई था। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज करा दी। विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्रों में भी समान रूप से पुरोगामी योगदान किया। वे अंत तक वस्त्र, औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे। डॉक्टर साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य दृष्टा उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के प्रवर्तक, एक महान संस्थान निर्माता, एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पारखी, सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी, एक अग्रणी प्रबंधन शिक्षक तथा और भी बहुत कुछ थे। और शगुनगर पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
एंड रवि, विक्रम साराभाई, ही स्टिल रिमेन्स अ टावरिंग फिगर इन इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट एंड कीप डूइंग सो एंड लीडर्स। एंड हाउ कैन वन हार्नेस साइंस फॉर प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस? ही हैज इंस्पायर्ड जनरेशंस। हिज एफर्ट्स ऑल्सो पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, लीडिंग टू द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज आर्यभट्ट इन द ईयर 1975. His vision extended beyond space science and he played a key role in setting up several institutions that contributed to India's scientific and industrial development, one of which is Indian Institute of Management, Ahmedabad.
और अब बात कर लेते हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1933, लेकिन आपने इस दुनिया से अलविदा दी 30 दिसंबर 1975 को। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले ही किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि रहे और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गजलों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया था।
रवि, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर लिरिसिस्ट, अ कंपोजर हु प्राइमरली वर्कड इन म्यूजिकल थिएटर। He's Richard Charles Rogers, the composer of The Sound of Music and Cinderella, Oklahoma and other beloved musicals, and he changed the face of the music forever. Rogers' 1938 show, The Boys from Syracuse, written with lyricist Lawrence Hart, was the first Broadway musical based on a Shakespeare play. He is credited with writing between 900 and 1500 songs, an estimated 85 of which are considered as standards. He wrote over 40 musicals and to date 19 film versions of his musicals have been made.
शगुन, जयंतियों में अब बात कर लेते हैं रमण महर्षि के बारे में। ये 20वीं सदी के महान संत हैं जिन्होंने तमिलनाडु स्थित पवित्र अरुणाचला पहाड़ी पर गहन साधना की थी। उन्हें केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आत्मविचार पर बहुत ही बल दिया था। रमण महर्षि के संपर्क में आने पर असीम शांति का अनुभव होता था। आज भी लोग शांति की खोज में तिरुवनमलाई स्थित रमण महर्षि के आश्रम, अरुणाचला पहाड़ी और अरुणाचलेश्वर मंदिर जाते हैं। और महर्षि ने भारत के साथ साथ पश्चिम के कई देशों में अपना उजाला फैलाकर देश को गौरवान्वित किया था।
जी रवि, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मृणाल सेन, फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ही हैज रिसीव्ड वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर्स, इंक्लूडिंग 18 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ही हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण and the government of France honored him with the Ordre des Arts et des Lettres.
जी, और अब समय इस तरह हो गया है शगुन के हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा नमस्कार, लेकिन चलते चलते आज का विचार कि घमंड न कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, घमंड न कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
सच अ ब्यूटीफुल थॉट दैट यू शेयर रवि।
धन्यवाद।
एंड ऑल्सो लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।